नमस्कार भारत 7 सितंबर दिन गुरुवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। कैरिबियाई द्वीपों पर बरसा चक्रवाती तूफान का कहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत और म्यांमार के बीच भरोसे का संबंध, लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
सही भी हम नहीं भी, क्योंकि शुरू में तो संबंध अच्छे ही थे, फिर बीच में जब इंडिया ने बड़ा मॉरलिस्टिक स्टैंड लिया तो चीन ने वहाँ अपना जमजमाव किया और अभी उनकी हालत अच्छी, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर।
और सुनिए कैसे एक बच्चे ने मेहनत के बूते अपने पैरों में पंख लगाए।
मैं फर्स्ट टाइम एक बार जोनल लेवल खेलने गया था, तो मैं बिना ट्रेनिंग करे बिना कुछ फर्स्ट आया था उसमें। तो जब से मुझे लग गया कि हाँ मुझे एथलेटिक्स भी करना चाहिए पढ़ाई के साथ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिताकांत पाल से। कैरिबियाई द्वीपों पर आए भयंकर तूफान इरमा ने सेंट मार्टिन्स और सेंट बार्ट्स द्वीप पे भारी तबाही मचाई है। कई द्वीपों पर बिजली नहीं है। बाढ़ और चक्रवात की मार से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री के मुताबिक वहां पर 90% इमारतें पूरी तरह गिर गई हैं। कई द्वीपों के बीच संपर्क टूट चुका है। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं सेंट मार्टिन्स और सेंट बार्ट्स में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये तूफान अब प्यूर्टो रिको की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर इस वक्त तेज बारिश शुरू हो चुकी है। अमेरिका और क्यूबा में भी तूफान को लेकर सावधानी बरती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई उनके प्रशासन की पहली पसंद नहीं है। उत्तर कोरिया ने रविवार को हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जिसके बाद उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया को कच्चे तेल के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और अन्य कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उत्तर कोरिया से जुड़े संकट को सुलझाने के लिए समझौते का रास्ता अपनाने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के बारे में ये बताया। राष्ट्रपति श्री भी इस पर कुछ करना चाहेंगे, हम देखेंगे कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं, लेकिन उत्तर कोरिया को लेकर जो हो रहा है वो हम चलने नहीं देंगे। मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति श्री मेरी बात से 100% सहमत होंगे, वो भी नहीं चाहते कि ये सब हो। हमारे बीच दिल खोलकर बातचीत हुई है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस बीच चीन ने उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समाधान की अपील की है, जिसमें उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम को रोक लेगा, वहीं बदले में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का साझा सैन्य अभ्यास भी बंद करने की अपील की गई है। बांग्लादेश ने म्यांमार की राखिन प्रांत में हिंसा के कारण सीमा पार कर भाग रहे 1,40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राखिन प्रांत में हिंसा की खबरों के संकेत मिलता है कि म्यांमार की सरकार वहां से नागरिकों को बचाने में सक्षम नहीं है। बांग्लादेश ने इस बात पर भी आशंका जताई है कि म्यांमार की सेना सीमा पर जमीनी सुरंग बिछा रही है। म्यांमार की सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रति हिंसा के आरोपों को खारिज किया है और रोहिंग्या कट्टरपंथियों पर गांव में आग लगाकर नागरिकों को भगाने में मदद करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में शरण लेने वालों की संख्या 3 लाख को पार कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए राहत सामग्री कम पड़ सकती है। कैटलोनिया की स्थानीय संसद ने स्पेन से स्वाधीनता के सवाल पर 1 अक्टूबर को जनमत संग्रह कराने संबंधी कानून को हरी झंडी दे दी है। वहीं स्पेन की सरकार ने इस कदम का विरोध किया है। सरकार ने इस कदम को गैर कानूनी बताया है। स्पेन की सरकार ने संवैधानिक अदालत से कैटलन असेंबली के वोट को खारिज करने की अपील की है। कैटलन संसद के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है। स्पेन की डिप्टी प्रधानमंत्री सोराया साइंस सांट मारिया ने कहा है कि जनमत संग्रह कराने के लिए की गई वोटिंग शर्मनाक है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में इस समय वक्त हुआ है सुबह के 6:35, लेकिन यहाँ से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर कैरिबियाई द्वीप बारमूडा और एंटीगुआ में रात का अंधेरा इस समय गहराता जा रहा है, जहाँ चक्रवाती तूफान इरमा की वजह से 90% से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, पानी में गाड़ियां डूब गई हैं और इसे कम से कम बीते एक दशक में सबसे भीषण चक्रवाती तूफान माना जा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
यह कैरिबियाई सागर में स्थित फ्रांस के द्वीपों पर आए तूफान इरमा का असर। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवाएं हैं और भारी बारिश। पिछले एक दशक में सबसे शक्तिशाली तूफान इरमा ने कैरिबियाई क्षेत्र में फ्रांसीसी द्वीपों पर काफी नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान अपने उच्चतम संभव स्तर यानी कि श्रेणी 5 का है और उत्तरी वर्जिन द्वीप समूह से गुजर रहा है। इन द्वीपों की तस्वीरें जो टीवी पर प्रसारित हो रही हैं, उनमें सड़कें पानी से लबालब भरी हैं और गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। तूफान इरमा सबसे पहले बारबुडा के तट से टकराया है। एक स्थानीय टीवी स्टेशन एबीसी टीवी 10 पर कुछ स्थानीय लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया। पूरा घर ही गिर गया था। हम 7 लोग थे और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे या फिर मदद मांग सकते थे। एक फायरमैन आया और उसने हमें बचाया। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। वहीं दूसरी एक महिला ने बताया,
My daughter asked me, "Mommy, what to do? Call 911." So she did.
पूरा घर टूट गया। मेरी बेटी ने पूछा कि क्या होगा। हमने 911 पर कॉल किया और वहाँ से बताया गया कि बाथरूम में चले जाएं। हमने वही किया। पूरा घर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। हमने बाथरूम का दरवाजा पकड़ रखा था। ये थे स्थानीय निवासियों के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस तूफान के कारण हताहतों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन और सेंट बार्ट्स पर इरमा का प्रभाव बहुत मुश्किल और क्रूर होगा। इस तूफान ने बारबुडा द्वीप पर भारी तबाही मचाई है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्यादातर इमारतें तबाह हो चुकी हैं और कम से कम एक व्यक्ति की इस तूफान के कारण मौत हो चुकी है। एंटीगुआ और बारबाडोस के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बीबीसी को बताया कि दोनों द्वीपों पर तूफान की चेतावनी के चलते पहले से सावधानी बरती गई थी, इसलिए बहुत बड़े नुकसान को टाला जा सका है। गैस्टन ब्राउन ने कहा,
And I think this is an impressive story of readiness and resilience.
हमने पहले से ही ये सुनिश्चित किया था कि पिछले 2 दशक में जो भी इमारतें बने वो कम से कम 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को झेल सकें। सभी सार्वजनिक स्थलों को पहले से तैयार रखा गया था। हमने पिछले 72 घंटों में नालों की सफाई करवाई है ताकि बाढ़ का पानी रुके नहीं। तूफान को देखते हुए लोगों की तैयारी अच्छी थी, इसलिए जान माल का नुकसान कम हुआ है। ये थे गैस्टन ब्राउन के शब्द। तूफान इरमा के कारण कई द्वीपों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल ये भयंकर तूफान पश्चिम में प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच इस हफ्ते के अंत में इस तूफान के अमेरिका पहुंचने की संभावना के चलते फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके को अनिवार्य रूप से खाली कराने के आदेश दिए गए हैं।
कैरिबियाई द्वीपों पर बरसा चक्रवाती तूफान का कहर, रिपोर्ट सुनी अभी आपने हरिता कांडपाल की जुबानी। और चलिए अब बात भारत और म्यांमार की, जिन्होंने 11 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिंग्या संकट पर ऑंग सान सूची सरकार का समर्थन किया, साथ ही यंगून में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया।
फ्रेंड्स, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि भारत और म्यांमार के रिश्तों का आधार 5B है। 5B यानी कि बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम और बर्माटिक। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बी छूट गया है और यह बी है भरोसा। भारत और म्यांमार का एक दूसरे पर भरोसा।
तो जैसा कि आपने सुना, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत और म्यांमार के बीच भरोसे का संबंध है, लेकिन इतिहास बताता है कि म्यांमार से भारत की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है और म्यांमार के साथ संबंध और व्यापार के मामले में चीन भारत से कहीं आगे निकल गया है। म्यांमार के साथ दोस्ती और कूटनीति में भारत क्यों और कैसे पिछड़ गया, जानने के लिए मेरे साथी रजनीश कुमार ने जेएनयू में भारत म्यांमार संबंधों की जानकार प्रोफेसर सविता पांडे से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि म्यांमार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि विंडो टू साउथ ईस्ट एशिया, एक तो हमारा इनसे सीधा सीधा बॉर्डर है और हमें साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है ये। और क्योंकि सरकार की प्राथमिकता बुक ईस्ट पे एक्ट ईस्ट बनाने की है पॉलिसी की, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा हो गई है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में।
हमेशा कहा जाता है कि जब चीन किसी देश में अपना पांव पसार लेता है तब भारत हरकत में आता है, क्या म्यांमार के साथ भी यह बात सही है?
म्यांमार के साथ सही भी और नहीं भी, क्योंकि शुरू में तो संबंध अच्छे ही थे, फिर बीच में जब इंडिया ने बड़ा मॉरलिस्टिक स्टैंड लिया तो चीन ने वहां अपना जमजमाव किया, और अभी उनकी हालत अच्छी, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उनके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और उनका वन बेल्ट वन रोड में, वो ही नहीं, वो उनके यहाँ जो आपस में जो ग्रुप्स हैं उनको साथ में बात कराने में भी चीन का हाथ है, वो हमसे पहले वहां पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि उन्होंने इतने सारे वहां ग्राउंड बनाए हुए हैं एनर्जी सेक्टर में भी, इसलिए चीन का वन अपमैनशिप तो है ही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, और क्योंकि पूरी बुक ईस्ट पॉलिसी को ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है, एक्ट ईस्ट नाम रख दिया गया उसका, इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए भी काफी है।
भारत के लिए क्या एक कंफ्यूजन जैसा रहा है या भ्रम जैसा रहा है कि वो सैन्य शासन से अपना संबंध आगे बढ़ाए या न बढ़ाए, क्या सैन्य शासन की वजह से भारत संबंधों को आगे बढ़ाने में बचता रहा है?
शुरुआत तो की थी आजादी के एकदम बाद, लेकिन उसके बाद जब मिलिट्री शासन आ गया तो इंडिया ने हाई मॉरल स्टैंड लिया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ कि चीन का प्रभाव वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि म्यांमार की चीन के साथ समस्या नहीं है, एथनिक रिबेल्स हैं, लेकिन जहाँ तक व्यापार का सवाल है, इन्वेस्टमेंट का सवाल है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में चीन का जमजमाव है वहाँ पे।
एशिया के कई देशों में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव बड़ा ही प्रभावी रूप में दिखता है, उसी रूप में हम देख सकते हैं कि म्यांमार में भी चाहे वो बौद्ध संस्कृति का प्रभाव हो, इतने गहरे संबंध रहे हैं सांस्कृतिक रूप से, फिर भी भारत उन चीजों का क्या फायदा नहीं उठा पाता है, कहीं न कहीं वो पिछड़ जाता है इस मामले में?
पिछड़ गया है पर ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कलादान इनिशिएटिव है, कारवे इनिशिएटिव है, ये सब की शुरुआत तो है उस तरह, लेकिन क्योंकि पास्ट में इतना अच्छा प्रभाव इनका नहीं रहा, डाउट एक दिमाग में आ जाता है कि कितनी दूर तक समझाएंगे इस संबंध में। तो मुझे लगता है जब भी डायरेक्ट बॉर्डर शेयरिंग होती है और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे इंसर्जेंसी वगैरह की प्रॉब्लम है, उनमें म्यांमार हमारी अच्छी खासी मदद कर सकता है, और अगर इस फील्ड में कोऑपरेशन होता रहा तो सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है।
ये थी जेएनयू में भारत म्यांमार संबंधों की जानकार प्रोफेसर सविता पांडे। भारत म्यांमार का जिक्र होते ही जिक्र होता है रोहिंग्या शरणार्थियों का, जो बड़ी संख्या में भारत में भी रहते हैं। भारत का कहना है कि वो अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेज देगा, लेकिन भारत की ये नीति कितनी सही है, सुनिए पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की राय।
जब 20 मिलियन बांग्लादेशी रिफ्यूजी लीगली यहाँ आ गए हैं, म्यांमार ये जो एरिया है जिसमें रोहिंग्या मुसलमान है, वो हमारा तो कोई डायरेक्ट वहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये तो बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, लेकिन ये वहाँ से हमारे देश में आना शुरू कर गए हैं और कई जगह फैल गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर तो बिल्कुल रुकावट डालनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि इनको जो इलीगल हैं लोग उनको डिपोर्ट किया जाए, ये मेरा ख्याल ठीक रास्ता है। जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया है यूएनएससीआर से, वो बात अलग है, क्योंकि उनको फिर शरण मिल रही है यूएनएससीआर की, उनके पास कार्ड है, तो उनके लिए तो कोई हमें हल निकालना पड़ेगा। जो लेकिन जो बिल्कुल इलीगल है उनको तो ठीक कर हमारी गवर्नमेंट की नीति ठीक है कि उनको वापस भेजना चाहिए।
ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, जो भारत में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की भारत की नीति को सही बता रहे थे। चलिए अब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहां वर्ष 1970 में बसाए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों और स्थानीय आदिवासियों के बीच मन मुटाव बढ़ता जा रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बुधवार को बस्तर के 7 जिलों में सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर नजर आया। कई इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, तो कहीं कहीं यातायात भी प्रभावित हुआ। आदिवासी लड़कियों के साथ सुरक्षा बलों द्वारा कथित यौन प्रताड़ना तो एक मुद्दा था ही, 1970 में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के खिलाफ लड़ाई भी आज के बंद का बड़ा मुद्दा था। बांग्लादेश से आए लोगों को 47 साल पहले आदिवासी बहुल बस्तर में बसाया गया था। आज इनकी आबादी 3 लाख के आसपास है और ये बस्तर के करीब 150 गांवों में फैले हुए हैं। अब स्थानीय आदिवासी और शरणार्थी आमने सामने हैं। आदिवासी नेता राजाराम तोडिम का कहना था कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ शरणार्थी उठा रहे हैं और सरकार उन्हें आदिवासियों का हक कम करके आरक्षण का भी लाभ देने वाली है।
यहाँ पर बांग्लादेशी जो लोगों को रिफ्यूजी बताकर जो यहाँ ला के बसाए थे, आज उनकी संख्या में बेपासा इजाफा हुआ बस्तर संभाग में। दूसरे देश के लोग आके यहाँ पर जमीन उमीन लेने लगी तो देशवासी कहाँ चले जाएंगे? और खास करके बस्तर अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार का कार्य तो आवाजाने की है उस तरह से।
लेकिन आज के बस्तर बंद से दुखी बंग समाज के प्रदेश अध्यक्ष असीम राय का कहना है कि कुछ आदिवासी नेता बंग समाज और आदिवासियों के बीच फूट डालकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम मानते हैं कि धूर आदिवासी बहुल इलाकों में शरणार्थियों को बसाने का सरकारी निर्णय ही गलत था। नेताम का कहना है कि आदिवासी समाज की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं गया।
जिस देश में प्रदेश में आदिवासी के साइकोलॉजी को नहीं जानता, चाहे नौकर साहब हो चाहे राजनेता हो, वो क्या विकास करेगा, कैसे विकास करेगा? ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को बाकी समाज में बहुत अंतर है। दुनिया में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट इसीलिए हुआ है आदिवासियों के लिए, दूसरों के लिए नहीं हुआ।
बुधवार के बस्तर बंद और आदिवासी बनाम बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर हमने राज्य सरकार के मंत्री और अफसरों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर सबने चुप्पी साध ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति की समझ रखने वालों का मानना है कि बस्तर में कमजोर पड़ती भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
कार्यक्रम में आगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ से चलिए झारखंड, जहां राजधानी रांची में कथित अवैध और जहरीली शराब पीने से बीते 2 दिन में कम से कम 8 लोग मारे जा चुके हैं। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
इन मौतों के अलावा 5 लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बुधवार की सुबह एक युवक ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लिहाजा राजधानी के कई इलाकों में दहशत है। हम सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती 19 साल के एक युवा संतोष कुमार का हाल जानने पहुंचे। उनकी माँ मालती देवी बताती हैं,
रात में हाँ रात से खराब था, ये लोग पीला खाया तो उसका रात में खराब हुआ। उसके बाद में हम लोग सुबह भी नहीं पन जानकारी, मैं रात जगह है कहा कि हम बोले इसको रात जगह, इसके पापा बोले छोड़ो रात जगह सोने दो, शाम को ही लड़का का डेट सुना।
गौरतलब है कि झारखंड में जगह जगह रविवार सोमवार को कर्मा पर्व का उत्सव मनाया जा रहा था। संतोष भी इसी उत्सव में शरीक हुआ था। आशंका है कि घर से बाहर रहने पर उसने शराब पी। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में ये बातें सामने आई है कि राजधानी के डोरंडा इलाके से कई लोगों ने अवैध शराब खरीद कर पी। मरने वाले जैप के दोनों जवान भी इसी इलाके से थे। इरगू टोली के एक युवक अमित कुमार की मौत के बाद उनके परिजन ने बताया,
इन लोग दोस्ती यारी में समझे ना थोड़ा सा नशा करते थे, तो भाई इन लोग खरीद कर डोरंडा से लाया दारू और पिया, उसका सेवन किया तो भाई सुबह में ही उन लोग को उल्टी होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद देखते ही देखते बहुत ज्यादा सीरियस हो गया।
36 घंटों के दौरान एक के बाद एक मौत से रांची पुलिस अब हरकत में आई है। डोरंडा इलाके से जैप के एक हवलदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की गई है। इनके अलावा राजधानी के 2 थाना इंचार्ज और एक उत्पाद इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में CID की टीम भी अलग से जांच में जुटी है। रांची के SSP कुलदीप द्विवेदी का कहना है,
एक जगह से शराब खरीदने की बात आई थी, जिसके क्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, उस सोर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया और उसको पकड़ा भी गया है। वहाँ से लिकर को जब्त भी किया गया है, जिसको अब सीज करके और FSL भेजा जाएगा, जो उनका वॉमिटिंग का स्वैब है और जो पोस्टमार्टम के क्रम में जो जानकारियां मिलेंगी उससे हम लोग जानकारी लेके आगे ये करवाएंगे।
उधर रिम्स के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर RK झा का कहना है कि ये प्रतीत होता है कि शराब में मेथोनल ज्यादा मात्रा में मिलाया गया है, इसके परिणाम खतरनाक होते हैं। राजस्व में वृद्धि और अवैध शराब के कारोबार रोकने के मकसद से झारखंड में पिछले 1 अगस्त से सरकार खुद शराब बेच रही है। अब इस हादसे के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे कहते हैं,
हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार ने शराब के साथ साथ अब मौत भी बेचने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
इस बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि सरकार ने इस हादसे को सख्ती से लिया है और शराब की खेप कहां से आई इसकी जानकारी जुटाने को कहा है। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
बिहार के चर्चित आदित्य सचदेव हत्याकांड में गया की एक अदालत ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस खबर पर और जानकारी के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
रॉकी गाड़ी ओवरटेक करने के मामूली विवाद में गया के एक व्यापारी के बेटे आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पाए गए हैं। यह घटना 7 मई 2016 की शाम की है। अदालत के फैसले पर आदित्य के पिता श्याम सुंदर सचदेव और मां चांद सचदेव ने कहा,
ये हमारे देश का एक मिसाल है। लोगों का जो कानून पर था भरोसा वो आज बढ़ा है।
अब और केसों को हम अगर देखते हैं जो हमारे यहाँ चल रहे हैं लोगों के, उस हिसाब से लगता है हमें जल्दी इंसाफ मिल गया।
रॉकी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनकी मां मनोरमा देवी के घर पर छापा मारा था तो घर से विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई थी। इस मामले में मनोरमा देवी को जेल जाना पड़ा था। वहीं पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव को बीते साल 19 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। तब भी रॉकी चर्चा में आए थे। हालांकि 10 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग पर जमानत पर रोक लगा दी थी। रॉकी के वकील कैसर सरफुद्दीन ने कहा है कि वे अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इस हत्याकांड के सामने आने से लेकर इसमें फैसला सुनाए जाने के बीच के करीब 1.5 साल में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। 2016 के मई में जदयू राजद साथ सरकार में थे और अब राजद बिहार का मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन दोनों दलों ने कल के फैसले का स्वागत किया है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद,
इस फैसले से जो इस तरह के कारनामों को अंजाम देने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेने का काम करते हैं जो लोग, उसमें ये संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
रॉकी की मां मनोरमा देवी बिहार में सत्तारूढ़ जदयू की विधान परिषद सदस्य हैं। घर से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद पार्टी ने बीते साल मई में ही उन्हें निलंबित कर दिया था, जबकि इस साल मार्च में रॉकी यादव की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को कहा था कि वो 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करे। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
और अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। हरिता कांडपाल के हाथ में मैं देख रहा हूँ कई अखबार हैं और ये अखबार थोड़े गीले लग रहे हैं। बाहर थोड़ी बारिश हुई है आज।
जी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो है कल रात भी बारिश की बूंदें गिरी थी और आज सुबह भी जो है कुछ मौसम इसी तरह का है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जो पहली खबर है वो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो चीन गए थे उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और तनाव की कुछ कम होने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को कुछ सूत्रों ने बताया कि डोकलाम जहाँ पर विवाद शुरू हुआ था और भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ, वहाँ पर भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो 150 मीटर जो है वो पीछे हट गए हैं। हालांकि अभी भी ये दोनों ही तरफ के सैनिक जो हैं वो डोकलाम पठार पर मौजूद हैं। हालांकि दूरी कुछ बढ़ी है और तनाव में कुछ कमी आई है, ये कहता है आज इंडियन एक्सप्रेस का पहला जो हेडिंग है वो। उसके अलावा जिनकी बात कल परसों से सारे ही अखबारों में छाई हुई है, बंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की बात है। जनसत्ता ने लिखा है कि पूरे देश में उनकी हत्या को लेकर आक्रोश है और केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट तलब की है और एक विशेष दल जो है वो गठित किया गया है उनकी हत्या की जांच के लिए। इसी पर इंडियन एक्सप्रेस में आज जो संपादकीय है वहाँ कुछ ओपिनियन दिए गए हैं उनकी उनकी मित्र रही हैं नंदना रेड्डी, जो खुद एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि ये उनकी जो हत्या है वो आज़ाद और निर्भीक आवाज़ को खामोश करना है। और महात्मा गांधी के प्रपौत्र जो हैं राजमोहन गांधी, उनका भी यहाँ पर एक लेख इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है जिसमें लिखा है कि सच्चाई को जो है वो दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को कलबुर्गी, पंसारे, दाबोलकर और अब गौरी लंकेश की हत्या से जिन अधिकारों का उल्लंघन हुआ था उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह था जीवन का अधिकार, धारणा और अभिव्यक्ति का अधिकार। इसके अलावा एक और खबर है जो सारे अखबारों में छाई हुई है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या हो रही है उससे रोकना चाहिए और हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो इस पर नजर रखें।
हरिता कांडपाल से समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने के बाद अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा भीतर से कि लगन और मेहनत का संगम हो जाए तो फिर क्या है जो हो नहीं सकता।
पिता दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। दिल्ली के आजादपुर के रेलवे स्टेशन के बड़े बाग स्लम में रहने वाले निसार ने 11 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 16 कैटेगरी में 15 साल के निसार ने यह सफलता हासिल की है। उन्होंने 200 मीटर की दौड़ भी 22.08 सेकंड में पूरी कर जीत हासिल की थी। आर्थिक तंगी के बावजूद निसार ने हार नहीं मानी। बीबीसी से बात करते हुए निसार ने अपने सफर के शुरुआत के बारे में बताया।
मैं फर्स्ट टाइम एक बार जोनल लेवल खेलने गया था, तो मैं बिना ट्रेनिंग करे बिना कुछ फर्स्ट आया था उसमें। तो जब से मुझे लग गया कि हाँ मुझे एथलेटिक्स भी करना चाहिए पढ़ाई के साथ, दौड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, बट उसी उतना अच्छा नहीं दे पा रहा क्योंकि उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है मेरे पास।
अंडर 16 कैटेगरी में दिल्ली में लगातार 3 बार विजेता रहे निसार के पसंदीदा धावक हैं जस्टिन गैटलिन। दौड़ में वे उन्हीं की तरह शुरुआत करना चाहते हैं।
सर मेरे फेवरेट प्लेयर है जस्टिन गैटलिन, जो अमेरिका से हैं 100 मीटर का, और जो वर्ल्ड का सबसे तगड़ा स्टार्ट है जिनका, उन्हें मैं फॉलो करता हूँ, उनकी तरह स्टार्ट लेना चाहता हूँ, उन्हें देखता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, उनकी टेक्निक देखता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ।
निसार के पिता ननकू अहमद को अपने बेटे पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला से ताल्लुक रखने वाले ननकू 38 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और 28 सालों से रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने बताया,
सर मैं 28 सालों से रिक्शा चला रहा हूँ और 16 साल से हमारी पत्नी जो है घरों में बर्तन कपड़ा वगैरह पोंछा वगैरह करती हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करी है मैंने कि सर अब हमारे बच्चे रहने की, क्योंकि मैं बीमार भी रहता हूँ, मेरा पांव भी खराब है, तो सरकार से मैंने बोला है सर अब अगर आगे उसको बढ़ाना है, वो कह रहा है हम बढ़ेंगे आगे, देश का नाम और ऊंचा करेंगे, तो उसके लिए सहायता कीजिए उसके डाइट वगैरह के लिए, मतलब पैसों की कमी है ना।
निसार भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना चाहते हैं। उनके पिता ने सरकार से मदद की मांग की है। निसार को भी उम्मीद है कि सरकार उन्हें सुविधाएं मुहैया कराएगी और वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। अभिमन्यु कुमार साहा, बीबीसी दिल्ली।
और बीबीसी के श्रोताओं को चलते चलते दो खबरें खेल के मैदान से बताता चलूं। पहली खबर क्रिकेट की है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एकमात्र T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंका ने भारत के सामने 171 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। और उधर टेनिस की दुनिया में यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त रफाइल नडाल ने रूस के नौजवान खिलाड़ी आंद्रेई रूबलेव को 1 घंटे 37 मिनट चले मुकाबले में 6-1, 6-2, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला रोजर फेडरर से हो सकता है। और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। कैरिबियाई द्वीपों पर आए भयंकर तूफान इरमा ने सेंट मार्टिन्स और सेंट बार्ट्स में भारी तबाही मचाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई उनके प्रशासन की पहली पसंद नहीं। कैटलोनिया की स्थानीय संसद ने स्पेन से स्वाधीनता के सवाल पर 1 अक्टूबर को जनमत संग्रह कराने संबंधी कानून को हरी झंडी दी। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक का मानना है कि पिछले साल के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस ने कई लाख डॉलर खर्च किए और एक खास खास अभियान चलाया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल, और इस दौरान कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, और फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ा सिंधु वासनी ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।